ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म कर्म च मे दिव्याम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। कर्म क्रियाएं च और मैं मेरे दिव्यां अप्राकृत यह जो वेति जानता तत्वतः ठीक ठीक त्यक्त्वा त्याग कर देहं यह देह पुनर्जन्म दूसरे देह में ना एति आता है माम मेरे पास एति आता है सह वह अर्जुना हे अर्जुन। श्री भगवान इस श्लोक में कहते हैं इस प्राकृत जगत में मेरा आविर्भाव मेरा अवतार तथा अवतार लेकर के किया गया कर्म दिव्य है अप्राकृत है। तो मेरे जन्म और कर्म को जो व्यक्ति तत्व से जान लेता है वह फिर इस संसार बंधन में नहीं रह जाता है, वह मुक्त हो जाता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता है, मेरे पास आ जाता है। अजन्मा भगवान के दिव्य जन्म के अवसर पर हम लोग यहाँ समवेत हुए हैं। तो भगवान के जन्म और कर्म की चर्चा चल रही है, कल जन्म की चर्चा होगी, जन्म के पहले ही कर्म की चर्चा हो रही है। तो भगवान ने एक राजा के रूप में अवतार लिए और बहुत सुंदर राज्य की स्थापना की है जिसे राम राज्य कहते हैं। तो भगवान का यह अवतार बड़ा ही सुमंगल है, बड़ा प्रिय है लोक में। तो भगवान के दिव्य कर्म की चर्चा यहाँ हम लोग कर रहे हैं। तो भगवान श्रीराम की बहुत सी लीलाओं में वन गमन की लीला एक महत्वपूर्ण लीला है। अयोध्या से चलकर भगवान श्रीराम श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं और गंगा जी को पार कर चुके हैं, यहां तक कथा हुई थी। उसके बाद भगवान चलते हैं गंगा जी के किनारे किनारे, चल करके वे प्रयागराज पहुंचे जहां इस वर्ष कुंभ लगा हुआ था। भगवान वहां आए और त्रिवेणी में उन्होंने स्नान किया। वहां आकर भगवान एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा से मिले, उनका नाम है भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, प्रयागराज में भरद्वाज जी रहते हैं, आज भी कहा जाता है कि वे रहते हैं वहां। कुंभ के अवसर पर अगस्त जी आए थे प्रयागराज में, हम लोग देखे हैं माघ मकर गत रविजल होई तीरथ पति ही आव सब खोई। जब भगवान सूर्य मकर रेखा पार करते हैं, मकर रेखा पर आते हैं, तो सब लोग प्रयागराज में आते हैं। प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है। तो सभी ऋषि आए हुए थे कुंभ के अवसर पर, तो अगस्त जी भी आए, जागवल्क जी आए। तो जागवल्क जी को रोक लिया भरद्वाज जी ने कुंभ के बाद भी। उन्हीं जागवल्क जी से वे भगवान श्री राम के विषय में बहुत से प्रश्न किए और उसी को रामायण में लिखा गया। तो भगवान श्री राम को अपने आंखों से भरद्वाज जी ने देखा था। बहुत बड़ा संवाद है, मैं उसको न कहकर भगवान के आगे वनगमन की लीला कहना चाहता हूँ। थोड़े में कह रहा हूँ कि जब भगवान ने देखा एक सुप्रसिद्ध वैष्णव को, महात्मा को, तो भगवान साष्टांग प्रणाम किए और ऋषि जानते थे कि ये भगवान है तो वो भी साष्टांग प्रणाम किए। मुनि रघुनाथ परस्पर नवहि, दोनों दोनों को प्रणाम कर रहे, एक अपना इष्ट देव समझकर और दूसरे व्यक्ति ये समझते थे कि मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, ये ऋषि मुनि है, मेरा धर्म है प्रणाम करना। भगवान ने तो ये आवेश था कि मैं क्षत्रिय हूँ, वे प्रणाम कर रहे। बाद में भरद्वाज जी ने कहा कि आज सुफल तपतीरथ त्यागू, आज मेरा तीर्थवास सफल हो गया, मेरी तपस्या फलीभूत हुई, मैंने जो त्याग किया संसार का वो त्याग सफल हो गया, आज मेरा वैराग्य, आज मेरा जप सब सफल हो गया, आपको आंख से देख रहा, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि निश्चित ही आप जैसा महात्मा जिसकी बड़ाई करे तो अच्छा व्यक्ति है, तो आप हमको बड़ाई दे रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं है लेकिन आप हमको अच्छा मानते हैं, तो हो सकता है आपकी कृपा से मैं अच्छा हो जाऊं आपकी कामना से। तो भगवान श्री राम वहां रुके एक रात और सवेरे भगवान ने पथ पूछा भरद्वाज जी से, कृपया हमें रास्ता बताइए, हम वन में जा रहे हैं, कि वन में कहाँ जाएंगे इसका कोई पता नहीं था। ऐसा नहीं था कि कहीं कहीं ने ये कहा था कि जाओ वन में, यहाँ डेरा डालना, यहाँ रहना, ये सब नहीं करना था। पहले के लोग वन में जाते थे तो घर पर कहते नहीं थे, हम यहाँ पर रह रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर दे करके जाते थे, लगाया करना, डिस्टर्ब करना, ऐसा नहीं ज्यादा हो गया। हरे कृष्ण। घर के लोगों को, राज्य की जनता में से किसी को भी पता नहीं होता था कि राजा किस वन में गए, त्याग ऐसे होता था। तो भगवान को भी इसी तरह से वन में जाना, लेकिन वे भरद्वाज से पूछे कि मैं वन में जाना चाहता हूँ, रास्ता कैसे जाएगा। तो भरद्वाज जी अपने चार ब्रह्मचारियों को, शिष्यों को बुलाए, चार को बुलाए तो पचासों लड़के दौड़ करके आए कि हम जाएंगे साथ में, हम जाएंगे रास्ता बताने। भगवान के साथ चलने में बड़ा आनंद मिल रहा है, चलिए हम बताएंगे, हम बताएंगे। तो भगवान ने उनमें से चार महाभाग्यवान ब्रह्मचारियों को सिलेक्ट किया, ठीक है आप चार चलिए। वे लोग गए, भगवान जाकर त्रिवेणी पर स्नान किए, जहाँ गंगा जी, जमुना जी और सरस्वती जी का मिलन होता है उसको त्रिवेणी कहते हैं। भगवान वहां नहाए, भगवान कृष्ण भी स्नान किए हैं उस स्थान पर, बलराम जी स्नान किए, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्नान किए, वो इतना पावन स्थान है। तो वहां जाकर भगवान श्री राम स्नान किए, बहुत सुंदर हम लोगों की तरफ लोग गीत गाते हैं, त्रिवेणिया में राम नहास सूरज उदय के बेरिया, भोजपुरी में गाते हैं, सूरज उग रहा था और भगवान श्री राम स्नान कर रहे थे, तो जमुना जी की धारा भगवान के शरीर से टैली कर रही थी, श्यामल जल धारा, गंगा जी की धारा उज्जवल। तो भगवान देख रहे थे श्याम हिलोर जमुना जी का और गंगा जी का धवल हिलोर, देखत श्यामल गौर हिलोर, तो देख रहे हैं। और भगवान वहां जल में खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़े, उसके बाद चले। कुछ दूर जाने के बाद उन ब्रह्मचारियों को भगवान ने प्रेम से आग्रह करके विदा किया कि आप लोग जाइए, गुरु की सेवा में रहिए, हम तो अब जाएंगे। लौटना नहीं चाहते थे लेकिन लौट गए। तो भगवान चले जा रहे हैं। तो पथ में जो भी गांव पड़ते थे उस गांव के बाहर बाहर ही भगवान गुजरते थे। ऐसे मान लीजिए किसी नगर में गांव में भगवान जा रहे हैं मेन पथ से रास्ते से, तो गांव के बाहर ही वे उस गांव को दाहिने कर देते थे, किनारे से जाते थे, क्योंकि तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास, भगवान को 14 वर्ष गांव या नगर में नहीं जाना था। पिता के वचन को पूरा करने के लिए भगवान इस तरह गांव से बाहर जा रहे थे। बड़ा ही सुंदर वर्णन है उन गांवों के विषय में और गांव के लोगों के विषय में। रामायण में कहा गया है, जयपुर गांव बसहि मगमाही, जयपुर गांव बसहि मनमाही, तेहि दिलो के सुरनगर सिहाय। भगवान श्री राम के पथ में जो गांव पड़ते थे उन गांवों को और नगरों को देखकर देवताओं के नगर फीके हो जाते थे। कभी भगवान अमरावती में जाकर के इस तरह भ्रमण नहीं करते, तो इस पृथ्वी पर अवतार लेकर जा रहे थे तो गांव के लड़के दौड़ते थे या सयाने वृद्ध महिलाएं भी दौड़ती। जयपुर गांव बसहि मगमाही, तिनहि नाग सुर नगर सिंहान। इस ब्रह्मांड में बहुत से बड़े बड़े नगर, जो सबसे सुंदर नगर है नागों के और देवताओं के। नीचे लोक में, पाताल लोक में भोगवती एक नगरी है सबसे सुंदर, जहां बड़े बड़े नाग रहते हैं सर्व रहते हैं और उन्हें बहुत सी सिद्धियां प्राप्त रहती है, बड़े सुंदर स्वरूप में रहते हैं, जब जैसा चाहे वेश बना सकते। भोगवती का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। और ऊपर के लोग हैं जैसे अलकापुरी या अमरावती, वरुणदेव की नगरी है विभावरी, ऐसी बहुत सी नगरियां, पुरिया, बड़े बड़े नगर का नाम स्त्रीवाचक शब्द में है, पुलिंग में नहीं। ब्रह्मा जी की नगरी का नाम है सात कौंभी, इंद्र की नगरी का नाम है अमरावती। तो इस प्रकार देवलोक में बहुत से नगर हैं, परंतु ये नगर और गांव भगवान के वनगमन के पथ में पड़े हुए गांव को और नगर को देख करके अपने को हीन मानने लगे, को हम क्यों नहीं वहां पर बताए गए जहां भगवान रास्ता पकड़ करके जा रहे। वास्तव में वे धन्य गांव थे, नगर थे, जहां से भगवान इतना निकट प्रस्थान कर रहे, गुजर रहे। तो देवताओं के और नागों के नगर और गांव, उसके समान कोई दूसरा लोक नहीं था, धन्य हो गए सब। वर्णन करते हैं कि वे गांव धन्य थे जहां भगवान जाते थे, और गांव के रहने वाले लोग वास्तव में सबसे बड़े सुकृति, देवराज इंद्र या अन्य देवता सब उन गांव के लोगों पर फूल बरसा रहे थे कि धन्य है आप लोग, हमारे नगर से भगवान कभी पार नहीं हुए, कहने के लिए हम लोग स्वर्ग में हैं। लेकिन भगवान अयोध्या से चल करके पृथ्वी पर स्थित नगरों में घूम रहे थे। जहितर वर प्रभु बैठे ही जाए कर ही कल्प तरुता सुबड़ाई, किसी वृक्ष के नीचे भगवान थोड़े देर के लिए आराम करने के लिए बैठते थे। सीता जी को देखते थे थक गई है, तो सीता जी का मुख देखकर कहते हंसते हैं, रुकते हैं, तो कर्तव्य है पति का कि वो पत्नी की सुविधा देखते तब चल रहे। भगवान देखे कि सीता जी के मुख कमल पर परिश्रम की बिंदु आ गए, परिश्रम के जल, तो वे कहते थे ठीक है हम यहाँ रुकते हैं, रुक जाते। जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठते थे उसकी प्रशंसा स्वर्ग के कल्प वृक्ष कर रहे थे। उनके नीचे भगवान नहीं बैठे, यहाँ आया तो बैठ रहे। कर ही कल्प तरुता सुपराई, जिस सरिता में और जिस सरोवर में भगवान स्नान करते थे, उस सरोवर के भाग की प्रशंसा देवताओं की नदियां और देवताओं के सरोवर करते थे। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध में वर्णन है कि देवलोक में बहुत बड़े बड़े सरोवर, और किसी किसी में मधु भरा हुआ है, अमृत भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, बहुत से जूस भरे पड़े, चाहे कुछ भी भरा हो, लेकिन भगवान तो उसका सेवन करने नहीं गए। तो इसीलिए देवताओं के सरोवर और देवताओं की नदियां चित्रकूट के रास्ते में स्थित सरोवर और नदियों की प्रशंसा करें। इस प्रकार भगवान वन में जा रहे। परसि राम पद पदुम परागा, मानत भूमि घुर निज भागा। यह पृथ्वी अपने को धन्य मान रही थी कि भगवान का चरण पद में हमारे ऊपर चल रहा है। वास्तव में पृथ्वी धन्य है। जितना भगवान इस पृथ्वी को सौभाग्य दिए हैं, उतना ब्रह्मांड के अन्य किसी स्थान को नहीं। स्वर्ग में भी भगवान जाते हैं, जैसे माता अदिति का कुंडल और इंद्र का छत्र देना था तो भगवान कृष्ण गए थे गरुड़ जी पर चढ़कर। लेकिन भगवान स्वर्ग में जाते हैं तो पूरा जूता और मोजा पहन कर जाते, चरण का स्पर्श नहीं होता। खूब ठाक पाक से जाते, उनको नीचे भक्त लोग उतरने ही नहीं देते हैं। परंतु इस पृथ्वी पर कभी वन में जाना है तो गाय चराना है, वहां तो जूता का कोई प्रश्न ही नहीं। भगवान श्री राम भी जा रहे थे तो पैर में कुछ धारण नहीं किए। एक पादुका थी भगवान की, खड़ा हूं तो भरत जी लेकर के गए थे मिलने के लिए, और जो गए थे भगवान जूता पहनकर नहीं निकले थे, खड़ा लगाकर नहीं निकले, तो अनावरण पैर से चल रहे थे। पृथ्वी धन्य हो गई भगवान के चरण चिन्ह को पाकर, धन्य अति धन्य हो गई। परसि राम पद पदुम परागा, मानत भूमि भूर निज भागा। पृथ्वी अपने को बहुत भाग्यवती मान रही थी, और इसीलिए यह पृथ्वी स्वर्ग से भी बढ़ करके हो गई थी, यहां तक कि वैकुंठ से भी बढ़ करके हो गई थी, क्योंकि वैकुंठ में भी भगवान का चरण ऐसे सुलभ नहीं होता। प्राय विमान पर, गरुड़ जी पर, सवारी पर ही रहते वैकुंठ, पृथ्वी पर चल रहे। छा कर रही घन विबुध गण बरसही सुमन सिंहा, जहां जहां भगवान जाते थे तो बादल स्वयं ही छत्र बनकर के चलते जाते थे। छा कर रही घन, बादल स्वयं छाता बनकर के चलते थे, भगवान को घाम नहीं लग पाते। तो किस दिन काम आएंगे? छा कर रही घन विबुध गण बरसही सुमन सिंह, देवता पुष्पों की वर्षा करते जाते थे, बादल छाया करते जाते थे। बादल छाया करते थे इसका अर्थ यह है कि बादल के जो स्वामी हैं इंद्र, वे बादलों को आज्ञा दिए भगवान के ऊपर हमेशा तने रहो, कभी घाम न लगे, और देवता फूल बरसाते थे। इस प्रकार का दृश्य हुआ। तो भगवान जहां जहां जाते थे वहां फूल की वर्षा होती रहती थी और छाया रहती थी, सभी अनुकूल रहते। जब किसी गांव से भगवान पार करते थे तब गांव में अकस्मात हल्ला होता था कि अरे बहुत सुंदर पुरुष आए हैं, बहुत सुंदर पुरुष आए हैं और रास्ता पकड़ करके जा रहे हैं, अभी 10 मिनट में पार हो जाएंगे गांव को, मतलब बाहर से। तो लोग सुनते थे, सुन करके दौड़ते थे बड़े वेग से, जो भी काम था उसको उसी समय छोड़ देते थे। भोजन करना, शयन करना या कोई भी काम धंधा था सब छोड़ कर आ। ऐसा वर्णन किया गया है कि बच्चे और स्त्री तक वो जो भोजन कर रहे थे, आधा भोजन किए और हाथ भी नहीं धोए, बस चल दिए देखने के लिए भगवान का। यदि हृदय में प्रेम है तो शुद्धि अशुद्धि का कोई महत्व नहीं है, भगवान के दर्शन में उत्कंठा हृदय में होनी चाहिए। तो जूठे मुंह और जूठे हाथ लोग दौड़े, बच्चे देख रहे थे भगवान को एक टक, स्त्रियां देख रही थी, पुरुष देख रहे थे, पूरा गांव खाली हो जाता था। सब जाते थे, आपस में बातचीत करते रहते थे सौंदर्य की, जो जाकर के देखता था एक टक देखता रहता। वहां पर वर्णन किया गया है कि रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा, भगवान श्री राम का मुख ही चंद्रमा बन जाता था उनके लिए, और ये चकोर जैसे देखते रहते। आप लोगों ने सुना होगा कि चकोर एक ऐसा पक्षी है जिसका चंद्रमा से बहुत प्रेम है। चंद्रमा उगता है तो चकोर देखना चालू करता है अपलक नेत्र से, और देखते 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 चंद्रमा अस्त होता है, वैसे वैसे उसका सिर मुड़ता जाता है, और एक मिनट के लिए भी, एक सेकेंड के लिए भी अपनी आंखों को हटाता नहीं। चंद्रमा से उसका इतना प्रेम। तो इसी तरह सब लोग भगवान श्री राम को देख रहे थे, हटाने पर भी नहीं हटते थे, हमें देखने दो हमें देखने दो। और भगवान ने अपना इतना वैभव प्रकाशित किया कि प्रत्येक व्यक्ति यही देख रहा था कि राम का मुख मेरे तरफ है, यह भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हुआ। किसको निराश करे, जैसे मान लीजिए कोई भगवान के पीछे खड़ा है तो वो व्यक्ति तरस रहा होगा कि कब देखे, इसीलिए भगवान सौ बार मुख बना लिए। कोई ऐसा अनुभव नहीं किया कि मैं पीछे हूं, सब लोग यही देख रहे थे कि राम का मुख मेरे तरफ है और देख रहे थे। देख करके पुरुष लोग ढूंढते थे, बातचीत करते थे, आप कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस अपराध से आपकी मां ने आपको घर से निकाल दिया, काहे देहलन घरवा से निकाल बबुआ बोलन। तो वे लोग कहती थी कि किस अपराध से आपको घर से निकाल दिए, कैसी माँ है, कैसा कठोर हृदय है कि आपको वन में भेज दिया, आप यहां रुकिए। इस तरह से पुरुष लोग बात करते थे। तब तक कोई व्यक्ति ऐसे जा करके एक बरगद की छाया में गांव से बाहर तुरंत घास कोमल कोमल और पत्ता बिछा करके भगवान से कहता था कि आप आइए यहाँ थोड़े काल के लिए विश्राम कीजिए, और अच्छा तो है कि आप यहाँ आज रुकिए, प्रातः जाइएगा, यदि इतना नहीं रुक सकते हैं तो एक दो घंटा रुक जाइए, और पानी भर करके लाते थे गांव से या पानी पी लीजिए, रास्ते में थक गए होंगे, कुछ फल मूल लाते थे खाने के लिए, क्योंकि उनको पता हो गया कि गांव का बना हुआ कोई भी पदार्थ नहीं खाएंगे, बन के पदार्थ खाएंगे। तो लोग लाते थे, कहते थे यहाँ विश्राम कर लीजिए, कल प्रातः काल होते ही हम आपको विदा कर देंगे, बल्कि हम आपके साथ चलेंगे। वन बड़ा खराब स्थान होता है, बहुत से बाघ रहते हैं, सिंह रहते हैं, सर्प रहते हैं, भालू रहते हैं, तो हम लोग आपको ले जाएंगे, दिखाएंगे वन, आप अकेले जा रहे ठीक नहीं है। तो भगवान इनके प्रेम में वचन को बड़े स्नेह से सुनते थे, और देखते थे आपसे प्रेम है तो रुक जाते थे, और उनके दिए हुए फल को खाते थे और पानी पीते थे। तो पुरुष लोग भगवान को एक तक देखते थे, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़ उमड़ जाती थी देखने के लिए। तो एक दृश्य का वर्णन किया गया है कि पुरुष लोग राम के साथ बात कर रहे थे, किसी एक भी स्त्री ने भगवान श्री राम से बात नहीं किया, और स्त्रियां पिताजी के पास जाती थी, सीय समीप ग्राम सीय जान, नाव गांव पूछत सकुचाय, गांव की स्त्रियां सीताजी के पास बैठती थी, कब कहां कैसे समाचार करना चाहिए, किसको कैसे बैठना चाहिए, सब रीति है, नीति है वास्तव में। तो सीता जी के पास गांव की स्त्रियां जाती थी, सीय समीप ग्राम तीय जाए, तो कुछ पूछने में संकोच करती थी कि ये बहुत बड़े घर की है, राजकुमारी है, हम लोग गांव की है, गंवारी है, और बिना पढ़ी लिखी है, गरीब घर की है। तो ये आती थी सीता जी के पास, और बारंबार सीता जी के पैर पर गिरती, प्रणाम करती थी। यह तो पता हो गया था कि यह रानी है, अयोध्या से आई है, और हम लोग जनता है, सेविका है, तो वे सब स्त्रियां गांव की सीता जी को पढ़ और साहस करके कुछ बात पूछने लगी। राजकुमारी विनय हम करें, हे राजकुमारी जी, हम आपसे विनय कर रही हैं और पिए स्वभाव पूछत कस डरहि, हमारा स्त्री का स्वभाव है पूछने में हमको संकोच आ रहा है। आप बुरा मत मानिएगा, बिलगन मानव जानी गंवारी, हम लोग गांव की स्त्रियां हैं, अतः हमसे कोई गलत बात पूछ ली जाए तो आप बुरा मत मानना। ये गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, तो कहती हैं, ये जो राजकुंवर दो सुभग सलो ने जिनते लहित तिमरकत सोने, ये जो दोनों राजकुमार हैं ये बहुत सुंदर हैं, लगता है कि नीलमणि ने इसी व्यक्ति से कांति ग्रहण किया है और स्वर्ण ने इस छोटे लड़के से कांति ग्रहण किया है। इसका अर्थ यह है कि यह नीलमणि से भी अधिक सुंदर है और वह स्वर्ण से भी अधिक सुंदर है। छोटा भाई इस सुंदरता का एक प्रकार से वर्णन है, नीलमणि बिल्कुल नील वर्ण की चमकती हुई चमकता हुआ मणि है और स्वर्ण तो चमकता ही है तप्त कर दिए जाने पर। लक्ष्मण जी सोना जैसे गोरे, सोना जैसे गोरा होना दूसरी बात है और गोरों जैसे गोरा होना दूसरी बात है, वो भिन्न चीज है। भारत में लोग ऐसे गोरे होते हैं सोना जैसा, सप्त कांचन गौरांग। तो लक्ष्मण जी स्वर्ण जैसे गोरे और भगवान नीलमणि के समान सांवले, कुछ हरित वर्ण के दुर्वा दल श्याम। तो स्त्रियां कह रहे हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि नीलमणि में जो नील कांति है इस पुरुष से आई है और स्वर्ण में जो इतनी कांति है वह इस लड़के से आई है। कोटि मनोज लजाम निहारे सुमुखी कहूं को आई तुम्हारे, हे सुंदर मुख वाली सुमुखी, जो करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला यह जो लड़का है सांवला, यह आपका क्या लगता है? स्त्रियों को तो बस यही समाचार चाहिए और कोई स्पिरिचुअल टैकिंग नहीं है, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि 100% स्पिरिचुअल है, क्योंकि भगवान के विषय में प्रश्न है। ये सांवला पुरुष आपका क्या लगता है, यही प्रश्न था स्त्रियों का। सीता जी के सौभाग्य के चिन्ह को देखकर वे समझ रही हैं कि ये विवाहिता है, लेकिन अभी वे ये निश्चित नहीं कर पा रही थी कि इसका कौन पुरुष है कौन पति है, अथवा जानते हुए भी कुछ है इनके मुख से सुनना चाहती होंगी। जो भी हो तो पूछती है, कोटि मनोज लजाव निहारे सुख कहूं को आई तुम्हारे, हे सुंदरी, ये करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? तो सीता जी उनके बात को सुनकर सिर नीचे कर ले, फिर नहीं विलोक विलोक अति धर्म, वो इन स्त्रियों पर देख रहे थे सीता जी और इसके बाद कभी भूमि पर देखने लगती थी। तो सीता जी परिचय देती हैं, बहुत ही संकोची स्वभाव से बोल रही है और ऐसे बोली जैसे लगा कि कोयल बोल रही है, बहुत मधुर कंठ था, स्नेह से कोकिल बैनी बोली, कोयल के समान बोलने वाली सीता जी कहती हैं, सहज सुभाय सुभग तन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे, जिनका बहुत ही सुंदर स्वभाव है और जो ये गोरे हैं ये हमारे छोटे देवर हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। सीता जी कितनी शिष्ट भाषा बोल रही, ये हमारे छोटे देवर हैं, बड़े देवर का नाम तो भरत था और छोटे देवर में लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो कहते हैं ये जो गोरे हैं ये हमारे छोटे देवर हैं। ऐसा सीता जी ने नहीं कहा कि वे उनके भाई हैं, अपने साथ संबंध जोड़कर कह रही है। वास्तव में जो भाभी होती है वह छोटे भाई के लिए माँ के समान होती है। और कभी कभी तो हम लोगों ने देखा है इस बात को कि छोटा भाई तो पत्नी के पति का छोटा भाई बिल्कुल छोटा रहता है, और जब घर में आती है, ससुराल में आती है, वो उसकी भाभी तो माँ के समान उसकी सेवा करती है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, छोटा भाई बड़ा होते होते एक दिन वो भूल जाता है अपने भाभी की सेवा, याद नहीं रखता है। ऐसा देखा गया गाँव में, संयुक्त परिवार में हम लोग ये बात देखते हैं। तो बड़े भाई की पत्नी माँ के समान होती है। तो बहुत ही स्नेह के साथ सीता जी कहती हैं कि ये छोटे जो है गोरे, ये हमारे देवर है, छोटे देवर। और जब पति को बताना हुआ तो बहुरी बदन विध्वंचल ढाकी पियतन चितय भाव गरीबा की। और जब अपने पति को बताना हुआ तो उन्होंने आंचल को और गिरा लिया, घूंघट को और गिरा लिया। बताना हुआ प्रियतन चितय भाव गरीबा की, और अपने प्रियतम के तरफ देखकर बाकी टेढ़ी भावों से उन्होंने संकेत से कह दिया, खंजन मंजु तिरीछे नयननी निजपत तीन ही कहे उसी सहनी। सीता जी की आंखें खंजन पक्षी के समान सुंदर थी, तो उसे इशारे से उन्होंने देख दिया श्री राम के प्रति, तो संकेत से उन्होंने एक प्रकार से कह दिया कि ये हमारे पति। कहा नहीं, केवल नेत्र का ऐसा संचालन हुआ, सैननी संकेत से ही सीता जी ने कह दिया कि ये हमारे पति। वास्तव में पति का परिचय कोई पत्नी दे तो थोड़े से ही समझ लिया जाता है, ये कहने की जरूरत नहीं ये हमारे मिस्टर हैं और ये हैं वो हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और मिस्टर भी जब बोलते हैं तो कहते हैं हमारे मिस्टेज हैं, अरे बाप रे। इन शब्दों से प्रेम नहीं झलकता, विदेशी शब्द हम लोग बोला करते थे तो संबंध भी विदेशी हो जाता है, ध्यान रखना चाहिए। सीता जी से पूछ रहे गांव की स्त्रियां के सांवले तुम्हारे कौन लगते हैं, तो बोली नहीं बल्कि पति को बताना हुआ तो और घूंघट को गिरा ली, और संकेत से उन्होंने ऐसे कहा, संकेत से देख दिया तो सब समझ। ये है पति का परिचय देने का तरीका। और ऐसे भी जैसे संस्कृत में बोलते हैं वो हमारी धर्म पत्नी है, तो धर्म पत्नी भी कोई बहुत अच्छा कहना नहीं है। तो धर्म पत्नी और कोई दूसरी अधर्म पत्नी भी है क्या? अरे पत्नी कहिए काफी है, पत्नी कहना ही काफी है। ये कहने का तरीका है, नहीं तो हमारे देश में तो पत्नी का परिचय देने का एक सहज उपाय होता है, पत्नी चाहे पति चाहे तो अपनी पत्नी का नाम पुकारे, नाम रख सकता है, पत्नी नाम नहीं रख सकती, ये शास्त्र में मना है और लोक में बिल्कुल प्रचलित बात है। पत्नी अपने पति का कभी नाम नहीं बोलती, किसी इमरजेंसी में कहीं बताना हो तो वहां बता सकती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चुप ही रह जाए पता ही न लगे, लेकिन जहां तहां पति का नाम नहीं बोलना चाहिए। आजकल की स्त्रियां तो अपने पति का ऐसे नाम रखती है जब लगता है जैसे पति उसका पुत्र हो या चाहे नौकर, ऐसे हालाती इस तरह का व्यवहार चल रहा है। और यदि पत्नी पुत्रवती है तो पुत्र का नाम लेकर के कहा जा सकता है अमुक की माँ को भेज देना, ये शिष्ट भाषा है। मतलब अपने साथ डायरेक्ट संबंध नहीं बोला जाता है, पुत्र के साथ संबंध करके बोला जाता है। अपने भाई से कोई खबर भेज रहे हैं तो यही कहना चाहिए अपनी भाभी को भेज देना, तो उसके साथ संबंध जोड़ा जाता है। एक प्रीति का संबंध जुड़ता है कोई वर्णन में। पुत्र से कह रहे हैं, यदि पत्नी को बुलाना तो कहेंगे अपनी माँ को जरा भेज देना, लेकिन हमारे वाइफ को कह देना ये बहुत गलत वाक्य है। जब कह रहे हैं उसे संबंध बताए, अगर नौकर हो तो कहिए कि मालकिन को भेज दो ऐसे ऐसे कह सकते हो। तो इस प्रकार से शिष्टाचार हैं। सीता जी अपने पति का परिचय बड़े ही शिष्ट ढंग से दे रही हैं। तो मुदित भाई सुनी ग्राम बधूटी, रंकन राय रास जन लूटी। यह बात सुन करके गांव की स्त्रियां बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। इतना प्रसन्न है कि सीता जी के चरण में गिर गिर कर उनको आशीर्वाद देने लगी। बड़े ही पुनिष्य पाए ऐसे है, सीता जी के चरण में गिर गिर करके देह अशीष सदा सुहागिन हो तुम्हें जब लगी मही अशीष। तो सीता जी के चरण में गिर गिर करके और आशीर्वाद दे रही है कि तुम सदा सुहागिन रहो, जब तक यह भूमंडल शेष नाग जी के मस्तक पर है तब तक तुम्हारा अहिवाद अचल रहे, तुम सौभाग्यवती हो। गांव की स्त्रियां आशीर्वाद दे रहे, ये बेचारी नहीं जानती कि उनके आशीर्वाद से पहले ही अचल अहिवाद वाली स्त्री अमर सौभाग्य है सीता जी का। लेकिन अपने तरफ से वो गांव की स्त्रियां जितनी आशीर्वाद देने की शक्ति है उतनी दे रही हैं। सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही अहि शीश, जब लगी मही या पृथ्वी अहि के शीश पर, सर्प के मस्तक पर जब तक यह भूमंडल है तब तक तुम सुहागिन रहो। कितने बार जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे लेकिन यह पृथ्वी भगवान शेष नाग के मस्तक पर रहेगी बहुत काल तक। यह आशीर्वाद देने की एक विधि, एक बार मानस में आशीर्वाद दिया गया सीता जी को, अचल हो अहिवात तुम्हारा जब लग गंग जमुन जलधारा। हे देवी तुम्हारा सौभाग्य अचल हो तब तक जब तक इस पृथ्वी पर गंगा जी और जमुना जी की धारा है, जो बहुत काल तक धारा है, दीर्घ काल तक तुम सौभाग्यवती रहो, कहने का आशय ये। बहुत प्रसन्न हो गए ये बात सुनकर। हमें इस बात पर बड़ा आनंद मिलता है कि हमारे कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें हम लोगों के जीवन की एक एक बात को बताया जाता है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, क्या व्यवहार करना है, कौन कैसा है तो उसके अनुसार व्यवहार करना है। तो जितने भी संबंध है उसमें स्त्री और पुरुष का संबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। तो ऐसा ही संबोधन करना चाहिए, ऐसा ही वचन बोलना चाहिए जिससे प्रीति बढ़े, ऐसा वचन बोलना चाहिए। कभी कभी आदमी क्रोध में हो जाता है तो गलत तरीके से बोलता है। हमने गांव में झगड़ा में सुना है एक दो बार, कोई पति अपनी पत्नी पर क्रोधित हो गया तो अपने ससुर का नाम रख करके कहा अरे अमुक की दादी ऐसे बोलता है, मतलब अपने ससुर का नाम लेकर मतलब उसकी बेटी ना कह करके दादी कहा। इस तरह से कभी नहीं बोलना चाहिए। स्त्री का त्याग है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वो बेचारी घर द्वार छोड़कर अपने पिता माता को छोड़कर के पति के पास आती तो उसको इतना प्रेम मिलना चाहिए कि वह कभी भी अपने माता पिता के स्नेह के लिए बेचारी तरसे ना और समझे कि मेरा घर है, मेरा घर है। हम लोग भारतीय परिवार में यही स्थापित है, लेकिन आज के युग में ये सब संबंध टूट रहे हैं। अतः भक्तों का एक कर्तव्य है कि इसको स्थापित किया जाए सही सही ढंग से। तो बहुत प्रसन्न हुई और बाद में भगवान श्री राम देखे लक्ष्मण के तरफ तो लक्ष्मण जी समझ गए कि अब चलना चाहते हैं। तो जब लोग ये सुने, ये देख लिए कि अब जाना चाहते हैं तो सब विषाद में पड़ गए, परंतु करें क्या, भगवान श्री राम चल दिए। कुछ लोग जाने लगे लेकिन बहुत मधुर वचन कह कह कर भगवान उन्हें लौटा देते थे। गांव में लोग जब लौटने लगे तब आपस में सहित विषाद परस्पर कहें विधिकर तब उल्टे समय है। आते समय गांव में सब लोग ब्रह्मा जी को गाली देने लगे, ब्रह्मा आज तक जो काम किया है सब उल्टा किया है, विधिकर तब उल्टे समय है, सारा काम उल्टा किया है। क्या क्या उल्टा किया है? विधाता निष्ठुर है और शंका उसको नहीं होती, भय नहीं होता। जैसस किन्न सरुज सकलम, देखो चंद्रमा को बनाया तो इसको कलंक वाला और घटने बढ़ने वाला बना दिया। प्रतिदिन पूर्णिमा जैसा रखना चाहिए ना उसको। जब चंद्रमा बनाने लगा तो चाहिए था कि उसमें कलंक भी न बनावे, काला काला धब्बा भी न बनावे और घटने वाला न बनावे, एक समान बनाना चाहिए था। प्रतिदिन पूर्णिमा की रात रहनी चाहिए, लेकिन क्या कहा जाता है, आज तक जितना काम ब्रह्मा किया है सब गलत किया, बेवकूफी से किया। रूख कलप तन सागर खारा, तही पठे बलराज कुमारा। देखो कल्प वृक्ष को रूख वृक्ष बना दिया, कल्प वृक्ष वृक्ष नहीं होना चाहिए था, वो कोई देवता होना चाहिए था, लेकिन कल्प वृक्ष को रूख बना दिया, वृक्ष बना दिया और समुद्र को खारा बना दिया। इतना पानी भरा हुआ है बॉम्बे में, पानी पीने के लिए बाहर से लाया जा रहा है, बताइए ब्रह्मा की बेवकूफी। इसको खूब मीठा पानी बना दिया होता तो क्या दिक्कत होती, सागर को खारा बना दिया तो पानी बनाने से फायदा क्या। जिसने कल्प वृक्ष को वृक्ष बना दिया और समुद्र को खारा बनाया, उसी दुर्बुद्धि ब्रह्मा ने इन राजकुमारों को वन में भेजा। इनके ललाट में उसी ने लिखा होगा कि ये वन में रहे। ब्रह्मा की करतूत हमेशा उल्टी होती, जो पे इन्हें दिन वनवास बाद किए विधि भोग विलास। यदि ऐसे सुंदर राजकुमारों को वनवास देना था, वन में भेजना था, तो विधाता अनेक प्रकार के सुख भोग की सामग्रियों को बेकार बनाया इस संसार में। जब इनको वनवास भोगना पड़ रहा है तो भोग विलास बना कर क्या किया। जो ये विचर ही बिनु पद त्राना बाद किए विधि वाहन नाना, अगर ये लड़के पैदल जा रहे हैं वन में चल रहे हैं तो हाथी घोड़ा या विभिन्न प्रकार की कार बनाकर ब्रह्मा ने बेकार परिश्रम किया। इन लड़कों को वाहन से चलना चाहिए था, ये पैदल चल रहे हैं। राम और लक्ष्मण पैदल चल रहे हैं बिना जूता के वन में, तो ब्रह्मा ऐसे मोटर गाड़ी और गज रथ आदि बनाकर क्या किया। ये सब उसकी बेवकूफी। पता नहीं ब्रह्मा पागल हो गया है कि क्या हो गया है, इतना हाथी बनाया, इतना रथ बनाया, इतनी कारें बनाया है। एक घोड़ा दे दिया होता इनको, एक हाथी दे दिया होता, चाहे रथ दे दिया होता, तीनों चढ़ करके जाते तो उसकी कला सार्थक हो जाती। लेकिन सब थर्ड क्लास के लोगों के लिए उसने कार बना दिया, हाथी घोड़ा सब, और आए थे अच्छे लोग पैदल जा रहे। ये ब्रह्मा की बेवकूफी, क्या कर। जो ये विचर ही बिनु पद त्राणा बाद किए विधि वाहन नाना, तरुवर वास नहीं विधि दीना हवल धाम रचिरच श्रम की न। अगर इनको वृक्ष के नीचे आवास दिया है ब्रह्मा तो संसार में बहुत अच्छा अच्छा भवन बना करके ब्रह्मा ने व्यर्थ परिश्रम किया। जिन अप्सराएं रहती हैं या देवता रहते हैं, सर्प रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, इनको वृक्ष के नीचे वास दिया और सर्पों को दैत्यों को देवताओं को सोने के महल में वास दिया। धिकार है ब्रह्मा की बुद्धि पर। लोग रो रहे थे और इस प्रकार की बात कह रहे थे। जवी कंद मूल फल खाई बाद सुधा दी असन जगमाए। अगर ये कंद मूल खा करके गुजारा कर रहे हैं तो ब्रह्मा ने जो अमृत बनाया है स्वर्ग लोक में वह बेकार बनाया, किसके लिए बनाया? जो ये मुनिपट धर जटिल सुंदर सुकुमार विविध भात भूषण वसन बाद किए करता है। यदि ये जटा धारण कर रहे हैं और ये बलकल वसन पहन रहे हैं तो ब्रह्मा अनेक प्रकार के अलंकार और वस्त्र बनाकर क्या किया? सब बेकार हो गए। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने लायक तो यह शरीर है, गहना पहनने लायक यह शरीर है, लेकिन ये लड़के जटा बनाए हुए। गंगा जी के तट पर ही भगवान ने बरगद का दूध मंगाया और अपने सुंदर सुंदर केसों को उलझा कर जटा बनाया। बरगद का दूध केस में लग जाता है तो जटा बन जाता है। यदि जटा बनाने पर भी भगवान कोटि कोटि कामदेव से भी अधिक सुंदर लगते हैं। सुंदरे किम सुंदरम, जटा धारण किए हैं, बलकल वस्त्र पहने हैं, लेकिन वो करोड़ों कामदेव। अरे इस तरह से वनवासी लोग, गांव के लोग बहुत ही दुख कान हो कर रहे। खास करके स्त्रियां कहती हैं, अरे सखी जब यह लड़का पृथ्वी पर पैर रखता है तो हमारा हृदय दलक जाता है, इतना सुंदर इसका चरण कमल भगवान श्री राम लग जाता है। चौपे नहीं दिन वनवास, वो कहते हैं कि अगर विधाता को इनको वन में भेजना था तो उसको चाहिए था कि पहले पूरे पथ को पुष्पमय कर देता, कोमल सब जगह फूल बिछा देना चाहिए। तो स्वर्ग लोक में इतना फूल भरा हुआ है, सब क्या होगा? कसन सुमगमय मार्ग किन्न, अगर इनको वन के पथ पर चलाना था तो क्यों नहीं रास्ता को पूरा पुष्पमय कर दिया? इस प्रकार आपस में कह कह करके लोग आंखों में आंसू भर लेते थे, आंसू आ जाते थे। यह है भगवान के अवतार का लाभ इस संसार में। भगवान जिधर चलते थे तो अपने आप सबका प्रेम भर जाता, जो प्रेम करोड़ों करोड़ों साधना करने के बाद भी नहीं होता है वो भगवान को देखते ही छलछला जाता था प्रेम। भगवान के श्रवण कीर्तन से भगवान में प्रेम बढ़ता है, परंतु जो देख करके प्रेम बढ़ता है वो सर्वोपरि। इसीलिए भगवान इस जगत में आते हैं। उनको मनुष्य तो छोड़ दीजिए, पशु पक्षी भी देखते हैं तो उनमें कृष्ण भावना पूरा प्रदीप्त हो जाती है। देख देख करके सोचने लगते हैं हाय हाय ऐसे है वैसे। और खास करके भगवान जो पैदल जा रहे हैं, कंदमूल फल भोजन कर रहे हैं, अभाव में जा रहे हैं, तो इसको देख करके और अधिक भक्ति बढ़ रही। किसी भी तरह से जीव का चित्त भगवान के विषय में संकल्प विकल्प करे, भगवान के विषय में संवेदना का अनुभव करे, यही तो भक्ति योग का परम फल। तो अपने आप भगवान जिधर जाते थे लाखों लाखों लोगों का मन भगवान में फंसता जाता था। हम लोग हर लौटे लेकिन बिना मन के लौटे, मन तो चला गया राम के साथ, भगवान ने अपने सौंदर्य के जाल में फंसा लिया सब मन। किसी का मन घर पर नहीं था, केवल तन भर था। वो लोग जीवन भर राम को नहीं भूल सके। और स्त्रियों ने कहा था कि सीता जी से कि हे देवी दर्शन देव जान निज, यदि आपको पुनसी पद से लौटना हो तो कृपया दीजिएगा। इस प्रकार भगवान भक्ति का अपने आप प्रचार करते लगे। दूसरे लोग बहुत बड़ी व्यवस्था करके भी दो चार लोगों में प्रेम पैदा कर सकते हैं भगवान, लेकिन भगवान अपनी लीला द्वारा कोटि कोटि जीवों के हृदय में प्रेम भर देते। भगवान के इस जगत में आने का लाभ होता है। श्रीमद् भागवतम में एक कथा है कि भगवान जब मथुरा गए तो उनको मथुरा के लोग देख करके कृष्ण के विषय में बहुत बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत बहुत बार है। तो वहां पर हरिश्री जी टीका में लिखे हैं कि यद्यपि भगवान कृष्ण की लीला को ये लोग जानते थे, परंतु उनको देखने के बाद ही इनका प्रेम बढ़ा कृष्ण में और बहुत बातें करेंगे। इसीलिए दीवानों को चाहिए कि भगवान के श्री विग्रह का अवलोकन अवश्य करें। प्रतिदिन नियम से भगवान को देखना चाहिए, देखने पर प्रेम बढ़ेगा। चरण से प्रारंभ करके और मुख तक भगवान को बारंबार देखना चाहिए। और उसी में लीलाओं का स्मरण भी होते रहना चाहिए। वास्तव में भगवान को देखने से जितना प्रेम बढ़ता है उतना अन्य साधनों से नहीं बढ़ता है। तो दर्शन नहीं मिलता है उसके अभाव में श्रवण कीर्तन से काम चलाया जा रहा है, क्या किया जाएगा। लेकिन जिस दिन भगवान को देखता है जीव, तो उसके चित्त की धारा, उसके इंद्रियों का वेग केवल भगवान की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ध्रुव महाराज का यंत प्रविश्य मम वाच विमान प्रसुप्ता संजीव यत् अखिल सत्य धरा सुधामना अन्यास च हस्त चरण श्रवण प्रगादि ताणा नमो भगवते पुरुषाय प्रभु। ध्रुव महाराज कहते हैं कि आपने स्पर्श द्वारा मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, आज मेरा हाथ पैर आंखें सब जग गई, पहले मरी हुई। इस प्रकार भगवान में इंद्रियों की धारा लगी। इसीलिए हमारे आचार्यों ने श्री विग्रह की स्थापना की है, भगवान को देखना चाहिए। भगवान ने आज किस रंग का गहना लगाए हैं, कैसे किए, देखना चाहिए ध्यान से। एक बार वृंदावन मंदिर में एक व्यक्ति भगवान को ऐसे देख रहा था, देख नहीं रहा था, केवल आंखें उधर किया। तो एक भक्त ने पूछा, दर्शन कर लिया? हाँ हाँ दर्शन कर लिया। तो उधर आने के बाद पूछा कि भगवान किस रंग के वस्त्र पहने हैं? तो कहा, ये तो मैं नहीं देखा। तो तुम देखे क्या? ये सब घटना बता रहा है। वो देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए ना, भगवान के चरणों के पास कैसी छवि है, चरण कैसे हैं, पीताम्बर पहने हैं कि लाल पहने हैं, नील वस्त्र पहने हैं, मुकुट कैसा बांधे हैं, एक एक बात ध्यान से देखना चाहिए। तो उतनी देर तक पूर्ण रूप से भगवान में चितावेश रहेंगे। जिनको साक्षात भगवान दिखाई दे रहे थे वहां और बातचीत कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्यों नहीं उनका चित्त भगवान में पूर्ण रूप से लग जाएगा। तो इस प्रकार भगवान रास्ते में सबको कृष्ण भावना भावित करते हुए बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते, ये तो कथा बहुत लंबी है, मैं भी आगे बढ़ रहा हूं। तो पहुंचे चित्रकूट के पास, थोड़ा दूर पर वाल्मीकि जी का आश्रम है वहां। हम लोग चित्रकूट गए हैं, देखे हैं वाल्मीकि जी का आश्रम चित्रकूट से थोड़ा इधर। तो भगवान श्री राम अपनी पत्नी और भाई के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। तो वहां गए, वाल्मीकि जी को प्रणाम किए, वाल्मीकि इनको प्रणाम करने लगे, बहुत प्रकार से स्तुति किए, बहुत लंबी स्तुति है। भगवान पूछते हैं वाल्मीकि जी से कि हमें वह स्थान बताइए, द्विघ्नों को, जिस क्षत्रिय से ऋषि मुनि या ब्राह्मण दुख पाते हैं तो वह अधम व्यक्ति होता है। मैं चाहता हूं कि मेरे चलते कोई किसी को दुख न हो, और मैं ऐसे स्थान पर रहना चाहता हूं तपस्वी के भेष में, जिस भेष में आया हूं, तब मुझे स्थान बताइए। तो वाल्मीकि जी विनोद में पूछ दिए, ये आप पूछ रहे हैं कि कहां रहूं, मैं आपसे पूछता हूं कि आप कहां नहीं है जहां मैं आपको रहने के लिए बताएं। तुम पूछू मैं रहूं कहां, मैं पूछत सब जाऊं, जहां न हो तह देहूं, कहीं तुम ही दिखाऊं उठाऊं। आप कहां नहीं है ये बताइए। भगवान तो सर्व व्यापक है, कंकड़ में है, ब्रह्मांड रस्त प्रणाली चयांत रस्त, लेकिन भगवान लीला के अनुरूप वचन बोल रहे हैं, मैं कहां रहूं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप कहां नहीं है। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने माना कहा, अरे परमात्मा रूप से मैं सब जगह हूं, इस रूप के लिए स्थान बताइए। ऐसे मानो भगवान ने हंस करके कहा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, बहुत सुंदर है, 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताया है भगवान के रहने का। वहां भगवान रहते ही हैं, कहने का अर्थ ये है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान बता रहे हैं। सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सी लखन समेता। हे राम, अब मैं स्थान बता रहा हूं जहां आप लक्ष्मण सीता के साथ रहिए। सुनिए पहला स्थान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना भर ही निरंतर हो ही न पूरे तिन्ह कह ही तुम कह गृह रूरे। ये पहला स्थान है। कथा को सुनता रहता है, सुनता ही नहीं होती है और सुनने की लालसा होती है, उसके हृदय में आप रहिए। कहने का अर्थ है कि आप रहते हैं उस हृदय में, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। आप देखते हैं समुद्र में बड़ी बड़ी नदियां निरंतर गिरती रहती है, ऐसा नहीं है कि दो चार महीना गिरे इसके बाद बंद हो जाए। चारों तरफ से नदियों का पानी समुद्र में आया करके गिरता रहता है, लेकिन फिर भी समुद्र ज्यों का त्यों रहता है। ऐसा कभी नहीं कहता है बस बस बंद करो अब मैं उबल जाऊंगा, अब तटबंध तोड़ दूंगा, अब हो गया, अब टाइम खत्म हो गया। ऐसा समुद्र कभी नहीं कहता है। तो जिनके श्रवण समुद्र समान है, जिनके कान के छिद्र समुद्र के समान है, उनके हृदय में आप रहिए। वैसे कान की जो अधिष्ठात्री दिशाएं हैं वो है आशा, आशा कहा जाता है, दिग्पाल की स्त्रियां। तो समुद्र के समान इस प्रकार से जो भक्त अपने आंखों को चातक बना चुके हैं और कुछ उन्हें सुहाता नहीं है संसार में, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, जो आपको देख करके ही सुखी हो सकते हैं। आपका रूप जिनके लिए जलधर है और उनकी आंखें चातक हैं, निदर ही सिंधु सरित सर भाई, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। चाहे कितना भी अच्छा मत हो, पंथ हो, लेकिन उनमें उसकी रुचि नहीं होती, वो तो आपके रूप के दीवाना होते हैं। तो वहां आप रही, उनके हृदय में रही। ये है रामचरित मानस का वाक्य। कहां है निराकार वाद बताइए, कहां कोई कल्पना है। निद्र ही सिंधु सरित सर भारी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है दोहावली में कि एक बार एक चातक पक्षी बादल की ओर देखता हुआ पी पी करता हुआ जा रहा था, उसको पपीहा भी कहते, कंठ सूख गया था, वो थक गया था और उड़ करके जा रहा था। तब तक सोचता था कि मैं तो मुक्त नहीं होना चाहता, मैं तो हमेशा चातक रहूंगा और हमारा मेघ से प्रेम रहेगा। तो अपने चोंच को ऊपर उठा करके कर लिया कि गंगा जी का पानी मेरे मुंह में न जाए, नहीं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, और ऊपर चोंच उठा करके रखा और मर गया, लेकिन गंगा जी का पानी मुख में नहीं जाने दिया, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मैं पुनः चातक बनूं और प्रियतम बादल से मेरा प्रेम और संबंध रहे। तो गंगा जैसी नदी का भी उसने तिरस्कार कर दिया, नहीं दिया पानी। इसको प्रेम निष्ठा कर, जब कृष्ण को स्वीकार किया तो किया, और भगवान के रूप से ही सुख मिल सकता है। तो जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना करके रखा है और रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, भले एक सेकंड के लिए देखने को मिले लेकिन रूप से ही सुखी होंगे। और जितने मत मतांतर हैं, योग ध्यान या निराकारवाद तप आदि, ये सब बड़ी बड़ी नदियां हैं गंगा जी मान लीजिए, चाहे कुछ भी, लेकिन चातक उसे क्या मतलब है, वो तो रूप से ही तृप्त होता है बादल के जल से। तो जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना लिया है उनके हृदय में आ रही है सीता और रमन के साथ। अब जिह्वा के लिए कह रहे हैं, जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जिह्वा जास, मुक्त हल गुण गण चुनई राम बसहु ही तास। आपका जस एक सरोवर के समान है और जिन्होंने अपनी जिह्वा को हंसनी बना लिया है और आपके गुणों कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे,
तो कान आंख और जिह्वा जो आप में लगाए हैं उनके पास रहिए, उनके हृदय में रहिए, उनके कहने का सही है। और प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा सादर जस लहै नितनासा, तुम ही निवेदित भोजन करई प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी प्रीति सहित कर विनय विशेष। इस प्रकार से और बात कह रहे हैं, करनित कर ही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चल जाई, जिनके हृदय बसहु रघु राय। एक बहुत ही शुद्ध स्थान बता रहे हैं, नासिका के विषय में कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुच सुभक सुहास सागर जास लहै नितनास, जिनकी नासिका आपके चरणों पर चढ़ाए हुए पुष्प को सुंघा करती है, और आपके प्रसाद को जिनकी नाक सादर जास लहै नितनास, जिनके नाक में यह वासना होती है कि भगवान के पुष्प को मैं सूंघूं, और जिनके जिह्वा में लालसा होती है कि भगवान के महाप्रसाद को मैं चखूं, और तुम्हें ही निवेदित भोजन करें, जो आपको निवेदित करके अर्पण करके भोजन करते हैं, और आपको निवेदन करके ही कपड़ा पहनते हैं, अलंकार धारण करते हैं, उनके हृदय में आप रहे। इसका संबंध और भी है, और शीश नम ही सूर्य गुरु द्विज पेख, जो लोग गुरु को शीश नम ही सूर्य गुरु द्विज पेख, देवताओं को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं, गुरु प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, प्रीति सहित कर विनय विषेक प्रेम के साथ और नम्रता के साथ उनकी प्रशंसा करके जो प्रणाम करते हैं, और हाथ है सदा जिनकी आपकी सेवा में लगे होते हैं, और आपका भरोसा छोड़कर दूसरा भरोसा जिनको नहीं, करनित कर ही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, जिनके हाथ सदा किसना आपका श्रृंगार करना, ये सब मुख्य सेवा है भगवान की। भगवान के लिए माला बनाना ये बहुत सौभाग्य की बात है। वास्तव में उन्हें पुरुषों का स्त्रियों का धन्य भाग है जिनका हाथ है भगवान का श्रृंगार करने में लगता है। हम लोग तो अपने देह को जब से जन्म लिए हैं धो ही रहे हैं, रोज रोज दांत धोते हैं, आंख धोते हैं, अगर अपने स्नान को दंत धावन के समय को सबको इकट्ठा किया जाए तो कई साल हो जाएगा, केवल ब्रशिंग को जोड़ा जाए तो अभी दो चार साल हो जाएगा, नहीं तो एक आध साल तो हो ही जाएगा, कंटिन्यूअस इसको जोड़िए बहुत हो जाएगा। अगर 24 घंटे में मान लीजिए स्नान को, दातुन करने को, कपड़ा पहनने को और खाने के समय को जोड़ेंगे तो कितना होगा, कम से कम दिन में 2 घंटा तो हो ही जाएगा 24 घंटे में, और उसमें शयन जोड़ लिया जाए तब तो आधा से भी ज्यादा हो जाए। तो शयन को उसमें जोड़ लीजिए, और ये सब फालतू खान पान, देह धोना मलना ये सब, तो इसको जोड़ेंगे और एक्सरसाइज करना और सब मान लीजिए सब जोड़ लिया जाए तो 12 घंटा हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति यदि 80 वर्ष जी रहा है तो 40 साल तो यही किया कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस देह को धोता रहा खाखंड, और भी जो समय बचता है तो उसमें ऑफिस जाना ये करना वो करना, भजन तो बहुत कम हो पाता। तो बहुत अच्छा है उन लोगों के जीवन में जो भगवान के अंगों को साफ करना सीख गए, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, भगवान के लिए माला बनाते हैं, ये बहुत अच्छा। इस सेवा अपने अंगों को लगाना चाहिए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो अपने हाथ से आपकी पूजा करते हैं उनके हृदय में आप रहिए, और चरण राम तीर्थ चल जाएं, राम बसहु तिनके मन में, हे राम जिनके चरण आपके तीर्थ में चले ही जाते, ये रोकने पर भी चले जाते। राम तीर्थ मतलब चित्रकूट, अयोध्या या वृंदावन, मायापुर, ये चरणों में एक लालसा होनी चाहिए, अथवा राम तीर्थ का यह अर्थ मंदिर भी है, चरणों में एक स्प्रिया होनी चाहिए, चलने की इनकी प्रवृत्ति है तो कहाँ चले, भगवान के मंदिर में भाग करके आ जाएं, धाम में चले जाएं, तो चरण राम तीर्थ चली जाए, राम बसहु तिनके मन में, हे राम आप उनके हृदय में बसिए। कितना स्थान हो गया, 4 हो गया ना, नहीं, जहाँ वसई शब्द आ रहा है वहीं एक गिना जाएगा। चार ही या पांचवा। तो अब आगे बता रहे हैं, मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, पूजे ही तुम ही सहित परिवार। जो मंत्र राज हमेशा जपते रहते हैं,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
मंत्र राज या महामंत्र, दोनों अर्थ एक ही है। महामंत्र में जो राम हरि और कृष्ण शब्द है, प्रत्येक शब्द भी अपने आप में महामंत्र है। शास्त्रों में अन्य जगह ये बात कही गई, कृष्ण शब्द अपने आप में महामंत्र है और हरि और राम। तो जो सदा या नित्य महामंत्र जपते रहते हैं, मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा, पूजे ही तुम ही सहित परिवार। जो सदा महामंत्र का जप करते रहते हैं और आपकी पूजा परिवार के साथ करते हैं। यह बहुत ही सुंदर संदेश है कि परिवार में सबको कुछ न कुछ सहयोग देना चाहिए पूजा में। कोई आरती कर रहा है, कोई श्रृंगार करेगा, कोई भोजन बनाकर प्रस्तुत करेगा, अथवा भगवान के लिए परिवार शब्द का प्रयोग किया गया है, परिवार के साथ आपकी सेवा करता है, हनुमान जी की, भरत जी की, सीता जी की। ये अभी अर्थ हो सकता है, पूजा ही तुम ही सहित परिवार। जैसे राम दरबार है, ये परिवार है भगवान का, तो आपको परिवार के साथ पूजन करता, अथवा अपने परिवार में बच्चे स्त्री माता पिता जी के साथ आपका पूजन करता। हमें लगता है कि यही अर्थ मुख्य है, परिवार के साथ पूजन करता है। मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, पूजे ही तुम ही सहित परिवार। तर्पण होम करही विधिनाना, दीप जेवाई दे ही बहुदाना। और विभिन्न प्रकार से तर्पण करते हैं, हवन करते हैं, तथा ब्राह्मणों को भोजन करा करके उन्हें बहुत दक्षिणा देते हैं, उनके हृदय में आप रहिए। तो मांगने का ये अर्थ है, आगे आएगा। कई श्लोकों का संबंध है, मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, पूजा ही तुम ही सहित परिवार। कहीं कहीं हमने देखा है पूरा परिवार भगवान की सेवा में लगता है, ये अच्छा है। पूजा ही तो वही सहित परिवार, अथवा पूजा कर रहा है व्यक्ति और परिवार गा रहा है तो वो भी सहित परिवार हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा है और दूसरा दूसरे तरफ मुख किया है कि ये क्या करने लगा झूठ। परिवार पूरा एंगेज, पूजा ही तो वही सहित परिवार। तर्पण होम कर ही विधि नाना, विप्र जेवाए दे ही बहुदान। ब्राह्मणों को वैष्णवों को जेवा करके भोजन करा करा करके दे ही बहुत आना, बहुत बहुत दान जो देते हैं। तुम्हते अधिक गुरु ही जिए जाने, सकल भाव सेवा ही सन्माने। और आपसे भी अधिक गुरु को मानते हैं जो सब तरह से सेवा करते हैं। और ये सब करके क्या मांगते हैं, सबकर मांग ही एक फल, राम चरण रति होए, तिनके मन मंदिर बसहु श्री रघुनंदन दो। ये सब काम करके और मांगते क्या है, चाहते क्या है, राम चरण रति होए, आपके चरणों में प्रेम मांगते हैं, तो उनके हृदय में है श्री राम, आप दोनों भाई सीता जी के साथ रहिए। इस प्रकार का वर मांगा जा रहा है। निवास स्थान, काम क्रोह मद मानन मोहा, लोभन क्रोधन रागन द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसम रघुराय। जिनके हृदय में काम विकार नहीं, ये कामना नहीं है किसी चीज की, ये कहने का, जिनके हृदय में कोई कामना नहीं है, काम कोह नहीं, किसी के प्रति क्रोध नहीं, और सांसारिक पद पोजीशन के चलते मद नहीं, और यह मैं हूं यह मेरा है इस प्रकार का ज्ञान नहीं है जिनको, जो शरीर को मैं नहीं मानते और शरीर के संबंध को मेरा नहीं मानते, जिन्हें न लोभ है और न तो क्षोभ है। लोभन क्षोभन, क्षोभ नहीं है, भजन में लगे हैं लगे, संसार में कोई भी आपत्ति आवे कुछ भी आवे जो भजन से विचलित नहीं होते, और किसी के प्रति स्पेशल उनकी आसक्ति नहीं है और न किसी के साथ उनका क्रोध द्रोह, किसी को सताते नहीं। जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसा हुआ विराज, जो कपट नहीं करते हैं, जिनके हृदय में, जिनके जीवन में दिखावा नहीं, कपट नहीं, उनके हृदय में आप रहे, ये स्थान वास के लिए मांग रहे हैं। और आगे कैसे कहते हैं, सबके प्रिय सबके हितकारी सुख दुख सरिस प्रसन्नता गारी, ये गीता का अनुवाद कर रहे हैं 12वें अध्याय में। सबके प्रिय, जो सबके प्रिय अर्थात है सबसे प्रेम करते हैं, और ऐसा आचरण होता है कि सब उनसे प्रेम करते हैं। जस्मा नो दुजते लोका, लोका नो दुजते जगह, न तो वह व्यक्ति लोगों को उद्विग्न करता है, न लोगों से उद्वेग को प्राप्त होता है। तो सबका प्रिय है और सबका हित करता रहता है, सर्वभूत हित रहता है, जो सबका हित करता रहता है, सबका प्रिय है, और सुख हो या दुख दोनों को जो समान मानता है, और प्रशंसा को और गारी को भी समान मानता है, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, यदि कोई बहुत बड़ी प्रशंसा किया, आप बहुत अच्छे महात्मा हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तब भी वैसा ही, और कभी कोई गाली देने लगे, पाखंडी कहने लगे, तब भी छोक नहीं, ठीक है चलेगा। तो सुख दुख में सम, सर्दी गर्मी में सम, मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, जो व्यक्ति है तो सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, कहें सत्य प्रिय वचन विचार, और जो सत्य वचन बोलते हैं विचार करके, बिना विचारे नहीं बोल देते, सोच करके बोलना चाहिए। एक जगह लिखा गया है किसी व्यक्ति को 3 बार मन में सोच करके तब जिह्वा पर वचन लाना चाहिए, सोच ले कि आगे जिह्वा के अग्रभाग पर लाने लायक है कि नहीं। एक बार एक भक्त प्रश्न किया था कि इतना ज्यादा सोचेंगे कैसे, इतना बोलने की जरूरत होती है तो कैसे सोचेंगे 3 बार। लेकिन जो कुछ भी हो संदेह पर वचन के विषय में सोच लेना चाहिए। महामंत्र बोलने में क्या सोचना है, लेकिन मान लीजिए किसी को डांटने जा रहे हैं तो सोच लीजिए पहले कि कहना ठीक है कि नहीं। महत्वपूर्ण बात को सोच लेना चाहिए, कहें सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, और जागते समय या सोते समय सब समय जो आपकी शरण में रहते हैं, तो आप पर भरोसा करते, जागे हैं तब भी भगवान की जो कृपा होगी होगा, सोने जा रहे हैं तब भी निश्चिंत सो गए, ये भगवान पर भरोसा नहीं रहता है तो आदमी रात भर तो हाय हाय करता रहे। दिन में ये भावना नहीं होनी चाहिए यह कमा लूं यह कमा लूं यह कमा लूं, तो भगवान पर विश्वास करना चाहिए, शांति से काम करना चाहिए, और रात में भी भगवान पर विश्वास करके सोना चाहिए, नहीं कि ये सोचा हाय घाटा लग गया, और घाटा भी लगा इधर नींद भी नहीं आई, दोनों तरफ से घाटा हो गया। तो अपने को इतना दुख में नहीं डालना, जैसे बच्चा सो जाता है माँ की गोद में वैसे भगवान के पास सो जाता है, भगवान जोग क्षेमम बहा में, जो कुछ हमारे जीवन में जरूरी है भगवान करेंगे, विश्वास रखें, इसको कहते हैं शरण। जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़ी गति दूसर ना ही राम बसहु तिनके मन में, आपको छोड़ करके जिनके लिए दूसरा कोई शरण नहीं है उनके हृदय में हे राम आप रहिए, ये वचन बोला जा रहा है। स्वामी सखा गुरु मात पितु, यही है और भी आज एक निवास स्थान बता रहे हैं, जननी समझा नहीं पर नारी धन पराव विस्ते विषभारी, जे हर सही पर संपत्ति देखी दुखित हो ही पर विपत्ति विषेखी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे तिनके मन सुख सदन तुम्हारे, जो दूसरे की स्त्रियों को माँ के समान समझते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है, पर नारी को जो दूसरे की विवाहिता स्त्री हो चुकी है तो उसको माँ के समान जो देखते हैं, और छोटी छोटी बच्चियों को अपनी पुत्री के समान देखते हैं। इसमें ये बात छिपा कर रखी गई, अपने आप समझ लेना चाहिए। जननी सम जन ही पर नारी, दूसरे की नारी को इसी दृष्टि से देखें कि यही हमारी माँ है। जैसे जन्म देने वाली अपनी माँ को जिस श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, उस श्रद्धा की दृष्टि से जो लोग पर नारी को देखते हैं, जननी समझान जान ही शब्द है, देखा ही शब्द नहीं है। जो दूसरे की स्त्री को जननी के समान मानते हैं, और धन पराओ विष पे विष भारी, और दूसरे के धन को विष से भी महाविष मान, यह बहुत कठिन उपाय है। मनी धानी, दूसरे का मनी हो चाहे किसी का हो, ये बहुत कठिन है भावना छोड़ना। धन पराओ विष पे विष भारी, दूसरे का धन विष से भी महाविष है। विष तो खाने पर उस व्यक्ति के शरीर को मारता है, लेकिन दूसरे का धन बेईमानी से ले लिया जाता है तो वह कई जन्मों तक नरक में पचाता है, दुख में डालता है। इसलिए वो महाविष, धन पराओ विष पे विष भारी। और जे हर सही पर संपत्ति दे, दूसरे के विकास को, दूसरे के धन को देख करके जो लोग हर्षित होते हैं और दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, और हे राम, जिनके लिए आप प्राण से भी अधिक प्रिय हैं उनके हृदय में आप रहे हैं। अर्थात भगवान वहां रहते हैं, भगवान का यह स्थान। ये सब गीता और भागवत का अनुवाद ही किया गया है, तो शब्द मात्र में थोड़ा सा हेर फेर है, विषय में हेर फेर नहीं। बहुत महत्वपूर्ण वाल्मीकि जी बता रहे हैं। संसार में हम लोग देखते ही हैं पर नारियां हैं तो उनको किस दृष्टि से देखें, संसार में धन भरा पड़ा है उसको किस दृष्टि से देखें। तो जैसे जहर रखा होता है, विष रखा होता है, आदमी डरता है कि कहीं हम छू न दे पी न ले, वैसे दूसरे के धन से डरना चाहिए। और दूसरा सुख में है, विकास में है, धन में है, सफलता में है, प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान की सृष्टि में यह जीव सुखी। और कोई दुख में है तो हरेक प्रकार से उसकी मदद करनी चाहिए, दुखी तो हो जाना चाहिए। जैसे भूकंप में कितने लोग दुखी हो गए, तो उसकी याद करके ही दुखी होना और जथा जो की सहायता करना, इसको कहते हैं दुखी तो हो ही पर विपत्ति विषय, दूसरे की विपत्ति में दुखी हो जाते। और भी अनेक प्रकार के, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या शब्द है, भला स्वामी सखा पितुमार गुरु सबके जिन तुम तार, हे प्रिय राम, आप ही जिनके स्वामी हैं, सखा हैं, माता हैं, पिता हैं और गुरु भी आप ही इनके हैं, उनके हृदय में आप बसिए। दोनों भाई उनके हृदय में बसिए सीता के साथ, जो आपको ही गुरु मानते हैं, आपको ही पति मानते हैं और आपको ही स्वामी माता पिता सब मानते हैं, उनके हृदय में आप दोनों रहे। और आगे बता रहे हैं, अवगुण तजि सबके गुण गहि, विप्र भेनु हित संकट सहि, जो लोग किसी के अवगुण को बिल्कुल छोड़ देते हैं और उसके गुण को ग्रहण करते रहे, अवगुण तजि सबके गुण गहि, संसार में सबके पास कुछ न कुछ गुण होता है, अवगुण भी होता है, तो अवगुण पर जो ध्यान नहीं देते हैं, कभी चर्चा भी नहीं करते, छोड़ देते हैं और उसके गुण को ग्रहण कर लेते हैं। अवगुण तज सबके गुण गाही, विप्र धेनु हित संकट सहि, और ब्राह्मणों के लिए और गौओं के लिए जो संकट सहते हैं, इस समय गौओं पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, उन्हें भर पेट भूसा और पानी नहीं पीने को मिल रहा है, कई राज्यों में स्थिति, और मनुष्य ऐसा राक्षस हो गया है, वो भूसा जला देते हैं खेत में, हार्वेस्टर से काटते गेहूं को, चावल को, तो पशुओं को भोजन पर्याप्त नहीं मिल रहा, बहुत दुख की स्थिति में। तो जो लोग गौओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए दुख सहते हैं, उनके हृदय में आप रहिए। और आगे भी बहुत सी बातें कहे हैं वाल्मीकि जी कि जो मन क्रम वचन से आपके दास हैं और सब सर्वत्र जिन्हें आप ही दिखाई देते हैं उनकी दृष्टि में स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, स्वर्ग नरक और मुक्ति में केवल आपको ही देखते हैं, उनकी दृष्टि में भेद नहीं है। यदि नरक में भगवान का दर्शन हो रहा है तो नरक ठीक है और स्वर्ग ठीक नहीं, तो उनकी दृष्टि में स्वर्ग का भोग या नरक का दुख समान है। उनको क्या दिखाई देता है, केवल राम हाथ में धनुष मान लिए और निजगे, जिनको कभी भी कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों में शुद्ध प्रेम चाहिए, उनके हृदय में हे राम आप सीता और लक्ष्मण के साथ रहे। तो इस प्रकार वाल्मीकि जी ने बहुत सा स्थान बताया। तो भगवान हंसने लगे, भगवान ने कहा कि मैं तो वहां रहता ही हूँ, लेकिन हमें कोई जंगल में वन में कोई स्थान बताइए। तब वाल्मीकि जी ने कहा ठीक है मैं बता रहा हूँ, चित्रकूट गिरि करम निवास, हे राम आप चित्रकूट में निवास कीजिए, वहां कामदगिरी है, आप वहां रहिए, तीनों ओर धनुषाकार नाला है वहां, वो नाला आज भी है जो वाल्मीकि जी ने बताया था भगवान, तो वहां आप रहिए आपके लिए ठीक पड़ेगा। भगवान सबसे अधिक वनवास यहाँ एक कुटीर बनाओ, हम यहाँ रहेंगे, वाल्मीकि जी की आज्ञा हुई है। तो लक्ष्मण जी कुल्हाड़ी लिए थे और कुछ सूखे पेड़ की शाखा को काटे और कुछ घास, और लक्ष्मण जी अपने हाथ से जब बनाने चले कुटीर तो देवता लोग कुल भील का रूप बना करके आ करके वे भगवान के लिए कुटिया बनाने लगे। तो देवता आए, विश्वकर्मा जी आए कुल भील के रूप में, उन्हें बहुत सुंदर पर्णशाला बनाया, भगवान उसमें रहने लगे। इस प्रकार भगवान को रास्ते से चला करके हम चित्रकूट पहुंचा दिए। तो सोचते तो भगवान थके मान रहे हैं, विश्राम करने दीजिए भगवान को, कल चित्रकूट की लीला थोड़ी सी होगी और जन्म की लीला होगी। हरे कृष्ण।